ओम शांति, ओम शांति। पिलाया हमें ज्ञान अमृत का प्याला, आंखों में आनंद, मन में उजाला, नारायणी वो नशा छा रहा है, नारायणी वो नशा छा रहा है, जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है, जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। हलचल में भी हो गए हम अचल हैं, हलचल में भी हो गए हम अचल हैं, प्रभु याद सेवा में सांसें सफल हैं, हर हाल में हंसना अब आ रहा है, जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है, जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। मिलाया हमें खुद से और खुदा से, मिलाया हमें खुद से और खुदा से, पहचानते हों हम जैसे सदा से, पहचानते हों हम जैसे सदा से, जीवन ये आपका हमें सिखला रहा है, जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है, जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। कमल पुष्प के सम जीना सिखाया, खिलना सिखाया, कमल पुष्प के सम खिलना सिखाया, हमें आपने राजयोगी बनाया, हमें आपने राजयोगी बनाया, जीवन के जीने का मजा आ रहा है, जीवन के जीने का मजा आ रहा है, और जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है, जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। प्यारे भाइयों बहनों, कितना प्यारा सा जीवन मिला है। सबसे बड़ी बात है कि हम प्रभु मिलन कर लिए, परमात्मा मिलन के साथ साथ हमें वो सारी प्राप्तियां हुई हैं जिनकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। और इस जीवन को पाने के बाद, जिसको पाने के बाद कुछ और पाना शेष नहीं रहता है, वो जीवन मिलने के बाद अब तो दिल में बार बार यही है, जीवन जिए तो जिए आप जैसा, जीवन जिए तो जिए आप जैसा, फरिश्ता बने हम बने आप जैसा, फरिश्ता बने हम बने आप जैसा, दिल शुक्रिया शुक्रिया गा रहा है, और जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है, जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। इस अलौकिक जीवन को जीने की अलग अलग पद्धति है। प्यारे बाबा ने तो बहुत प्यार दिया, बड़ा पुचकार दिया, सब कुछ तो दे दिया, वो निछावर हो गया हम पर। ऐसा जीवन मिलने के बाद मैं आप सबसे प्रश्न पूछता हूं, क्या आपको भी जीवन जीने का आनंद आ रहा है? सबको मिल रहा है आनंद? सबको अच्छा लग रहा है? प्रभु मिलन की मस्तियां सबको मिल रही है ना? हैं? किसी कोई तकलीफ तो नहीं? अच्छे से अच्छा ना? और सबसे अच्छी बात यह है कि जनवरी का मास है और अव्यक्त मिलन के लिए आप आए हैं, प्रभु मिलन की लगन में मगन है, और ये अव्यक्त मास हम सब ब्राह्मणों के लिए एक प्रकार से विशेष अव्यक्ति उपहार है, उड़ती कला में उड़ने का। सहज मधुबन में आइए, आप तीनों कॉम्प्लेक्स में जाइए, कहीं भी जाइए, बहुत अच्छी तपस्या चल रही है। मैं देख रहा हूं कि रात को 2 बजे से दूर दूर से भाई बहने, ज्ञान सरोवर में है तो पांडव भवन में, कहीं पर भी हैं तो वापस पांडव भवन में आके बाबा के कमरे में पूरी रिमझिम लगी है और आप सबने अपने अपने सेवा स्थानों पर रहते हुए भी अगस्त मास में बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थ किए हैं ना सबने। बाबा के कमरे में लगातार योग करना और इस तरह से करना एक बहुत अच्छी लहर है। इस लहर को देखते हुए अब हमें ख्याल आ रहा है कि कहीं बीच में ऐसा ना हो कि औरों को पुरुषार्थ करते हुए हम देखते रहें और हम अपनी पुरुषार्थ को उड़ती कला प्रदान न कर पाए, ऐसा ना होना चाहिए। तो जैसा टॉपिक दिया कि तीव्र पुरुषार्थ की सहज युक्तियां क्या है, आज मैं आपको पुरुषार्थ तो आप कर ही रहे हैं और करना तो है ही, लेकिन पुरुषार्थ साधारण नहीं, तीव्र पुरुषार्थ। लेकिन तीव्र पुरुषार्थ के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, कश्मकश हो रही है, कोई कहता है कि हमें पॉइंट्स याद नहीं रहते, कोई कहता है बाबा की याद नहीं होती, कोई कहते हैं कि योग नहीं लगता है, कोई कहते हैं विघ्न बहुत आते हैं, तमाम ढेर सारी बातें, कोई कहते हैं कि जब भी हम याद में बैठते हैं नींद बहुत आती है, तमाम ढेर सारी शिकायतें हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जहां सर्व प्राप्तियां हो रही हैं वहां पर हम इन प्राप्तियों से वंचित हो जाए। लगन में मगन होने का जब समय हो तो कहीं ऐसा ना हो कि हम पश्चाताप की अग्नि में रहे, चलते रहे, ऐसा ना हो कि मिलन की वेला में भी हम बिना मिले रह जाए और कल्प कल्प के लिए ड्रामा हमेशा हमेशा के लिए बन जाए, ऐसा ना होना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि अब साधारण पुरुषार्थ को भी अब समाप्त कर तीव्र पुरुषार्थ में उड़ना है ना। जानते हैं बोर्थी कला के अलावा कोई चारा नहीं, समय बहुत कम है और जो दादियों ने इतने पूरे यज्ञ ने 80 वर्ष 85 वर्ष जो हो गए, इतने वर्ष हो गए, अव्यक्त पालना के 50 वर्ष हो गए, इतनी पालना मिली है, इतनी आगे बढ़ चुके हैं और जो अभी आए हैं उनको तो अपने लिए विशेष प्रोग्राम तो बनाना ही चाहिए, सेल्फ प्रोग्रेस के लिए सेल्फ प्रोग्राम बना ले। तो आइए देखें कि तीव्र पुरुषार्थ के लिए सहज युक्ति। आप सब जानते हैं कि पूरा ज्ञान ये सहज ज्ञान और सहज राजयोग है। भगवान ने तो सब सहज किया क्योंकि वो जानता है कि ये बच्चे बहुत जन्मों जन्मों के थके हैं और थकते थकते इतने थक गए हैं, अगर इनसे अभी मेहनत कराएंगे, तपस्या कराएंगे तो ये कर पाएंगे या करेंगे भी कि नहीं करेंगे, इसलिए उसने सब कुछ सरल कर दिया। ये ज्ञान ही सहज राजयोग है। लेकिन इस सहज राजयोग को कोई कोई बड़े मुश्किल योग समझते हैं। मुश्किल क्यों करते हैं, मुश्किल क्यों करते हैं, मुश्किल इसलिए कर देते हैं कि सोच सोच के मुश्किल करते हैं, गलतियों से मुश्किल कर लेते हैं। मुश्किल नहीं है। मुश्किल कब लगता है, मुश्किल तब लगता है जब व्यक्ति अकेला होता है, मुश्किल तब लगता है जब उसको किसी तरफ से सहयोग नहीं मिलता है, मुश्किल उसको तब लगता है जब वो कोई काम में इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, रस नहीं मिल रहा है, रुचि नहीं हो रही है, उबाऊ हो रहा है, थकाऊ काम हो रहा है, काम चलाऊ काम हो रहा है, तब जाके मेहनत लगती है। मेहनत तब भी लगता है, मेहनत कब लगता है, मेहनत तब लगता है जब हमें उस चीज की यथार्थ विधि पता नहीं होती, मेहनत तब लगता है जब लाइन क्लियर नहीं होती है, स्पष्ट नॉलेज नहीं होती है, हमें जाना कहां है, करना क्या है। इसको योग मुश्किल क्यों लगता है, क्योंकि सबको योग लगाने की जैसे बाबा विधि बताते हैं उस सहज विधि से योग नहीं करते हैं। बाबा ने समय समय पर सहज युक्तियां भी बताई हैं लेकिन उनको हम ध्यान में नहीं रखते हैं। मेहनत तब भी लगता है, मेहनत तब लगता है जब हम अस्वस्थ होते हैं, हमारा मन बड़ा कमजोर होता है, हम निरुत्साहित होते हैं, उमंग उत्साह नहीं होता है और मेहनत तब भी लगता है जब हमारे पास विकर्मों का खाता ज्यादा होता है, जब बद्दुआएं मिलती हैं, जब गलतियों पर गलतियां होती हैं, तो भी मेहनत लगता है। मेहनत तब भी लगता है जब हम मैंपन, मेरापन, जिम्मेदारियों का बोझ सोचते हैं कि सारी दुनिया का बोझ मेरे ऊपर है, मेरी ही जिम्मेदारी है, मैं नहीं चलाऊंगा करूंगा तो दुनिया चलने वाली नहीं है ना। वो बुढ़िया जो है एक दिखाते हैं ना, बताते हैं, वो ट्रेन में जा रही थी तो ट्रेन के कंपार्टमेंट में जो बैठी तो अपने सिर पर यहां पर टोकरा रख लिया, जो रखा था वो रखा था, तो सबने कहा इसको तो उतार दे, तो बुढ़िया कहती है पहले से ही ट्रेन में इतना वजन है, बहुत लोग बैठे हुए हैं, तो इसको सामान क्यों नीचे रखूं। सब बोलते हैं अरे भाई तू भी तो बैठी है ट्रेन में ही, तो उसको उतार तो दे। तो ऐसे ही हम सब बहुत लोग हैं जो व्यर्थ की जिम्मेदारी का, मैंपन का, मेरेपन का इतना ज्यादा बोझ ढो रहे हैं कि उसी बोझ के नीचे दबे हुए खुल नहीं पा रहे। और बोझ तब भी लगता है जब जीवन में जो आनंद लेना चाहिए उसको जीवन जीने का जो ढंग है वो सब नहीं आता है। बोझ तब भी हो जाता है, थकान तब भी होती है, मेहनत तब भी लगता है जब बैलेंस नहीं होता है। बैलेंस नहीं होता है, हम दिनचर्या में इतने ज्यादा या तो लौकिक में चले जाते हैं तो पता नहीं लगता है कि मैं इतना गया हूं, फिर उसके बाद योग करो सारा दिन तो जीवन और दिनचर्या हमारी लौकिक में लगे, और जब हम वापस योग में बैठे तो क्या याद आएगा, फिर क्या याद आएगा, इसलिए मेहनत लगता है। तो आइए बैलेंस रखते हुए ब्लेसिंग ले और ब्लिसफुल लाइफ बना ले। कैसे करेंगे? मेहनत से मुक्ति का मार्ग क्या है? मेहनत से मुक्ति का मार्ग है पहला, मोहब्बत में समाए रहो। आज भी बाबा ने कहा सदा स्नेही बन जाओ। स्नेही के कई लक्षण बताए, पहले वो बताया कि किसी के जीवन परिवर्तन का अनुभव देखा तो स्नेही बन गए, या थोड़ी कुछ प्राप्ति हुई तो स्नेही बने। स्नेही बने जब औरों की शुद्ध आत्माओं का सहारा मिला तो स्नेही बन गए, लेकिन सदा की स्नेही। फिर बाबा ने कहा सहयोगी, जो भक्ति के संस्कार प्रमाण, ये लोग अच्छे हैं, काम तो अच्छा हो रहा है, कुछ इसमें करूं मैं सफल कर लूं, कुछ सहयोगी बन गए। और कुछ ज्ञान योग की कुछ शक्ति, कुछ परिवर्तन आया, कुछ थोड़ा अनुभव हुआ, कुछ स्मृति अच्छी आई, उसके प्रमाण सहयोगी बने। तो जब तक वो स्मृति रही, पॉइंट याद रही, तब तक तो शक्ति रही, और पॉइंट भूली निशक्त हो जाते हैं। तो बाबा उसके लिए कहते हैं कि सहयोगी माना, ये कार्य मेरा बाप का कार्य सो मेरा अपना कार्य है, उस चीज को पक्का करें तब सहयोगी यथार्थ कहेंगे, सदा के सहयोगी। सहयोगी ही निरंतर योगी हो सकता है, इसलिए जो निरंतर सहयोगी है तन मन धन समय श्वास संकल्प से, वो सहयोगी ही योगी हो सकता है। जो सेवाधारी निरंतर है वही निरंतर सेवाधारी ही निरंतर योगी हो सकता है। मनसा सेवा, स्व सेवा, यज्ञ सेवा, विश्व सेवा, चारों सेवाएं लगातार चलती रहे, निरंतर सेवाधारी ही निरंतर योगी हो सकता है। तो मेहनत से मुक्ति का मार्ग है, बाबा बहुत सहज उपाय बताते हैं। और सदा शक्तिशाली, आज की मुरली की जो पॉइंट थी, सदा शक्तिशाली बने। शक्ति नहीं है तो संघर्ष है। और फिटेस्ट सर्वाइव इन द वर्ल्ड, जो फिट है वही बच सकता है। और आने वाले दिनों में जो शक्तिशाली आत्माएं नहीं है वो समय के चक्रव्यूह में वो पिस जाएंगी। इसलिए हम सब में से हर भाई बहन को पूर्णतः शक्तिशाली बनने की बड़ी जरूरत है। शक्ति कैसे होगी? शक्ति होगी ज्ञान बल के द्वारा, योग बल के द्वारा, स्मृति के बल के द्वारा, दुआओं के बल के द्वारा, संगठन के बल के द्वारा, पुण्य के बल के द्वारा, इन सब के द्वारा हम शक्तिशाली बन सकेंगे। हम अपने को बार बार चेक करें, सुनते चलें और चेक करते जाएं कि ज्ञान सुनते सुनते क्या ज्ञान का बल जमा हो रहा है। ज्ञान का बल क्या है? ज्ञान का बल है जो मैंने सुना, जो मैं रोज सुन रहा हूं, उस पॉइंट को समय आने पर क्या मैं यूज कर रहा हूं। ज्ञान बहुत है लेकिन समय पर प्रयोग नहीं कर पाते तो उसको ज्ञान का बल नहीं कहेंगे। ऐसे अपने आप से पूछें कि मैं योग तो कर रहा हूं, मुझे योग करते हुए इतने साल हो गए, लेकिन क्या योग का बल जमा हुआ है? क्या मुझे अपने संकल्पों को जब चाहूं, जहां चाहूं, जहां स्थित करना चाहूं, क्या कुछ सिद्धियां मिली है? कितनी सफलता मिली है? क्या मुझे अपने कर्मेंद्रियों पर विजय मिली है? क्या मैं जिह्वा रस से, कन रस से, रूप रस से, रस के रस से, और जो रस तमाम रसों की रस्सियां हैं, इनमें मैं झगड़ा तो नहीं हूं? मैं अपने जीव पर, अपने कर्मेंद्रियों पर कितना कंट्रोल करता हूं, कितना पाया हूं विजय? अपने आप से बीच बीच पूछना चाहिए। ये नहीं कि संगम युग है, ब्रह्मा भोजन है, बहुत अच्छा भोजन है, सब हमारे लिए ही है, ऐसा नहीं। आपको जो उचित है, जितना खाना है उतना ही खाना चाहिए। ऐसा नहीं देखा कोई चीज अच्छी चीज देखी, कहते बाबा दे रहा है, खाने में क्या अड़ जाए, ज्यादा खा लिया और फिर वो तो नुकसान करेगा। अगर डायबिटीज पेशेंट है, सामने जलेबी अच्छी आ गई और अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं आप, तो अपने आप को देखना पड़ेगा कि मैं अपने जीभ पर मुझे कितना नियंत्रण है। ये देखें, ये योग बल है। देखें कि हम योग में बैठते हैं, बैठते ही मैं जहां चाहूं वहां अपने मन को स्थित कर सकता हूं कि आप बैठते ही नींद आने लगती। देखने में ये आता है कि हम सब राजयोगी तो हैं, लेकिन योग में बैठते हैं तो योग का जो आनंद आना चाहिए सरलता के साथ, जो आनंद आना चाहिए सबको नहीं आ पाता है। अगर किसी को आ भी गया तो बाई चांस आता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी तो जाके हुआ, अच्छा मौका मिला, मधुबन पहुंचे, बहुत अच्छा सामने चित्र रहा, माहौल अच्छा रहा। हम अपने आप को अपने बल से, अपनी शक्ति से, कितनी भी विपरीत स्थिति रहे, कितना भी हम रात को जागे भी रहें, दिन को सोए भी ना रहें, लेकिन जब बाबा को याद करने बैठे तो योग में आनंद आए। ऐसा नहीं क्या है, रात को जागा हुआ था ना, फिर ऐसा दवाई खाई थी ना, फिर ऐसा हुआ था ना। योग में हमारा निद्रा में होता है योग, योग निद्रा होने के बजाय निद्रा योग हो जाता है ना। तो कम से कम अपने आप को हम चेक करें कि हम योग बल कितना जमा कर पा रहे हैं, और योग बल ही हमें आज, जैसे बाबा ने स्लोगन में कहा, मनोबल, ये मनोबल सब सिद्धियां देने वाला है। मनोबल, मनोबल ही योग बल है। आपके संकल्पों में कितनी शक्ति समा रही है। ऐसे ही सेवा का बल देखें, सेवा का बल और फल, संतुष्टता और प्रसन्नता हमारे जीवन में कितनी आ रही, ये देखते चले। धारणा का बल देखें, पवित्रता का बल देखें। पवित्रता हमारी सबसे बड़ा बल है, सबसे बड़ी शक्ति है, और ये शक्ति सबके पास नहीं है, ये हम ब्राह्मणों के पास है, एक बहुत बड़ी शक्ति है, और हमें इसी पवित्रता के बल पर नई दुनिया बनानी है। हम सब पवित्र हैं, पवित्र आत्मा है, जिस दिन जन्म लिया बाबा के पास पवित्र भाव का वरदान मिल गया। केवल हम गलत सोच से अपनी इस अमूल्य जो धरोहर मिली है, जो संपत्ति संपदा मिली है, उसको साधारण समझकर मिसयूज न करें। हम वो पवित्र आत्माएं हैं जिनकी पवित्रता के बल से ग्रह नक्षत्र उपग्रह सबका परिवर्तन होने वाला है। हम वो पवित्र आत्माएं हैं जो सारे विश्व को परिवर्तन करने वाले हैं, जिस पवित्रता की आज संसार में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि ऐसा भी पवित्र रहा जा सकता है। देवता संपूर्ण पवित्र हैं और हम सब इतने पवित्र आत्माएं हैं, दुनिया लोग जा नहीं पाती है। हमारी इतनी बहनें, 45,000 बहनें, हमारे इतने युवा, इतने बाल ब्रह्मचारी, ऐसा इस कलयुगी दुनिया में, ये दुनिया के लोग जानते नहीं इसको। और हम इसी ताकत से, इसी पवित्रता के बल से सारे संसार को पवित्र बनाने वाले हैं। हमें अपने पवित्रता के ऊपर नाज होना चाहिए, ये नशा होना चाहिए कि हम पवित्र आत्मा है। रोज सवेरे एक संकल्प ये ले लें कि मैं पवित्रता का अवतार हूं, मैं फरिश्ता हूं, और देखें उसके साथ साथ आपके जीवन में बहुत ही आनंद आएगा, बड़ी प्राप्तियां होंगी। हम अपनी पवित्रता को साधारण न समझे, आप सब पवित्र आत्माएं हैं, महान आत्माओं की सजी हुई सभा है, महान आत्माओं की सजी हुई सभा है, पुण्य आत्माओं की बिखर रही प्रभा है, दिव्य आत्माओं का दरबार ये सजा है, दिव्य आत्माओं का दरबार ये सजा है, और पवित्र आत्माओं की बिखर रही प्रभा है। एक बार तालियों से आप अपना अभिनंदन सुनता है। तो आइए सहज युक्तियां कुछ निकाल लें, निष्कर्ष निकाल लें और अपने को शक्तिशाली बनाते चलें। पहली बात जो बाबा कहता है कि तुम मेरे राजा बेटा हो, मोहब्बत में समा जाओ, मेहनत से मुक्त हो जाओ। मेहनत से मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि सुस्त हो जाएं, मेहनत का मुक्त होने का मतलब है काम चोरी नहीं, मेहनत से मुक्त होने का मतलब है परिश्रम करे नहीं, वो नहीं, और ये परिश्रम का अवमूल्यन भी नहीं है। मेहनत मुक्त का मार्ग होने का मतलब है कि जो हम बार बार गलतियां करते हैं वो गलती ना करें, उसी चीज को बार बार गलत काम कर रहे हैं फिर दोहरा रहे हैं। मेहनत मुक्ति का अर्थ ये है कि कि बाबा के प्रेम में समा जाओ, स्नेह में समा जाओ। आज जो बाबा ने कहा प्रीत की रीत निभाने वाले नहीं, प्रीत की प्रीत जोड़ने वाले नहीं, निभाने वाले और निभाने वाले नहीं, समाने वाले, उसके प्यार में समा जाओ। कैसे समा जाएंगे, कैसे समाएंगे? समाने का बड़ा अच्छा रास्ता है, बाबा के गीत सुनते रहो, गीत बजा दिए, खूब आनंद लीजिए। कितने अच्छे अच्छे बाबा के गीत मिलने हैं, है ना सहज, है ना भाई, सबको है ना? हाँ, बहुत सहज युक्तियां। आज बाबा के प्यार को अनुभव करने के लिए थोड़ा देर बैठ के अगर लिख सकें तो लिखें, मुझे क्या क्या मिला है। जब तक अपनी उपलब्धियों का, अपनी प्राप्तियों का एहसास नहीं होता है, परमात्मा प्यार का अनुभव नहीं होता है, उसकी पुचकार का, उसकी स्नेह का, उसकी देन का, जो उसने हम पर एहसान किए हैं, ये बड़ी बात है कि वो हमको घर बैठे मिला है। मामा कहा करती थी, बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा संन्यास भी माफ कर दिया कि तुम बच्चे तुम सन्यासी बन जाओ, ये भी छुट्टी कर दिया, घर में बैठे आराम से, कोई तपस्या कोई मेहनत नहीं दिया बाबा ने। और बाबा चाहता भी नहीं कि बच्चे मेरी मेहनत करे, वैसे तो कोई बाप नहीं चाहता है कि मेरा बेटा रात दिन इतना मेहनत करना पड़े कि उसमें ही थक जाए। इसलिए हर एक बाप अपने बच्चे को राजा बेटा कहता है और देखना चाहता है कि वो गलीचों पे चलने वाला हो, सुखमय जीवन हो, महलों में पले। बाबा हम बच्चों की मेहनत देख नहीं पाते हैं, और बच्चों की मेहनत देखते हैं तो बाबा को बड़ी तरस आती है, बाबा को बड़ा ख्याल चलता है, मेरे बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तियों को मैं उपहार दे रहा हूं, सब कुछ तो दे दिया है, फिर ये मेहनत क्यों कर रहे हैं? उसे देखा नहीं जाता है। मेहनत मुक्ति का मार्ग है, मोहब्बत में समा जाओ। तो नोट करें कि क्या बाबा से हमको मिला हुआ है। संगम युग की प्राप्तियों को देखें, अपने भाग्य को देखें, श्रेष्ठ ज्ञान को देखें। ये ड्रामा का ज्ञान एक ऐसा ज्ञान मिला है कि ऐसा संसार में किसको नहीं मिला है, कितना अद्भुत ज्ञान मिला है। लोग रट भी लेते हैं लेकिन कहीं ऐसा होगा नहीं, कौन जानता है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है? कहीं पर बोलो तो कैसे कहते जो हो रहा अच्छा कैसे हो रहा है, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो होगा बड़ा अच्छा होगा। क्या हुआ जो रो दिए, अरे लाए क्या जो खो दिए, क्या बनाए जो मिट गया, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा बड़ा अच्छा होगा। जो लिया सब कुछ यहीं पे, जो लिया सब कुछ यहीं से, और जो दिया सब कुछ यहीं पे, लाए क्या जो लूट गया, जो हुआ अच्छा हुआ। कल तलक जो तेरा था आज है किसी और का, और कल किसी का हो जाएगा, सोच करके क्या हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। बदलते इस विश्व का सब कुछ बदलता जा रहा, चिंता करके क्या हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा बहुत अच्छे से अच्छा होगा। बड़ा अच्छा है, पुण्य की पूंजी कमा ले, पुण्य की पूंजी कमा ले, भाग्य तू अपना बना ले, सेवा करके ले दुआ, और जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। ऐसा ज्ञान मिला कि ड्रामा परम सत्य है, ये ड्रामा परम कल्याणकारी है, इस ड्रामा का हर दृश्य नायाब है, गजब का है, लासानी है, अद्वितीय है, अद्भुत है, आनंददायी है। इस ड्रामा के आनंद को देखिए, और ये ड्रामा स्वयं भगवान को पसंद है, स्वयं रचता वो भी प्रसन्न होता है ड्रामा को देखकर। और हम कहें बाबा ड्रामा है ना, कितना लगता है, कैसे लगता है, ऐसा नहीं। ड्रामा को देखिए, ये ज्ञान सुनकर के आनंद आता है, आनंदित होइए। इसमें सब वैरायटी खेल है, हम इस खेल का आनंद ले। इस ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है, कितना विविध है, इतना वेरियस है, इतनी विविधता है कि एक एक ब्यूटी को देखो तो आनंद आता है। इसमें कोई रावण का रोल अदा कर रहा है, कोई राम का रोल अदा कर रहा है, कोई किसका अदा कर रहा है, सबकी अपनी अदाकारी है। यहां पर जो रामायण धारावाहिक जो बना था उसमें अरविंद त्रिवेदी जो रावण बना था, कईयों के सैकड़ों लोगों का टेस्ट लिया गया तो उसमें जो उसने पार्ट बजाया तो उसको बड़ा इनाम मिला, सबसे ज्यादा तो फर्स्ट उसका भी प्राइज मिला, सबसे बड़ा अवार्ड उसको मिला पूरे रामायण में, क्योंकि रावण का तो रोल रावण वाले ही यही कर सकते हैं ना, राम का रोल तो जानते नहीं लोग कि राम का रोल क्या होता है, कैसे करेंगे उसको, है ना। यहां आया था भाई, वो आए थे और सब करके बताए। तो कहने का भाव ये है, ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है, इसकी विविधता को देखें और उसमें भी देखें कि मेरा जो रोल है, आपको लगता है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, भगवान कहता है जो सबसे कठिन रोल है वो सबसे अच्छे एक्टर को दिया जाता है, सबसे अच्छे एक्टर को दिया जाता है सबसे बड़ा रोल, और वो रोल हमको दिया गया है। इसलिए अपने भाग्य को देखकर, अपने पुरुषार्थ को देखो, अपने लक को देखकर के आनंदित होइए, ये आनंद से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है। ड्रामा का अद्भुत ज्ञान मिला है, पवित्रता का कितना, कितनी शक्ति मिली है पवित्रता का। जीवन के 60 वर्ष होने को आए, 58 वर्ष का हो गया, पता ही लगा कब 58 वर्ष बीत गया, कब युवा हुआ, कब इतने साल का हो गया, इतना पवित्र जीवन, इतना निर्मल जीवन, सपने में भी नहीं सोच सकता है कोई व्यक्ति कि ऐसा भी इस कलयुगी दुनिया में इतना पवित्र जीवन रह सकते हैं लोग। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय ज्ञान और उस ईश्वर के चमत्कार की ये परिणति है जो हमको इतना अद्भुत जीवन मिला है, कितना पवित्र जीवन मिला है। यहां एक भाई मिले, परिचय हो रहा था, तो कोई मेहमान बड़ा साथ आया था, उसको परिचय कराया, भाई हमारे सतीश भाई हैं, यहाँ के गीतकार हैं, गायक हैं। तो कुछ और सुनने की बजाय कहते, भाई ये बताओ, आप लोगों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आप लोग अभी नहा धो के निकले जैसे। तो हमने कहा हम नहा धो के ही निकलते हैं हमेशा, उसके बिना निकलते ही नहीं। और ब्राह्मणों के, हम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के जो चेहरे पर जो प्रसन्नता है, जो रूहानियत है, जो पवित्रता की ब्यूटी है, वो दुनिया में कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिल सकती, ये दिव्य चक्षु वाले ही जान सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हमसे भी ज्यादा लोग दुनिया में मुस्कुरा लेते हैं, लेकिन सब खाली खाली खाली, अंदर कुछ भी नहीं उनके पास। ये पवित्रता की शक्ति है, बड़ी अद्भुत शक्ति है, इसको अनुभव करें, देखें, उसका स्मरण करें, उसका स्वरूप बन जाए, आनंद लें। तो आइए आपको सहज युक्तियां और बता दें कैसे कैसे पुरुषार्थ करें। मेहनत से मुक्ति का मार्ग तो भगवान ने दे दिया। एक तो पहली बात, सवेरे सवेरे दिनचर्या का आदि जो शुरुआत है हमारा, एक श्रेष्ठ स्वमान से कर लें। स्वमान में इतनी बड़ी शक्ति है जो सारे दिन आपको उपराम रख सकती है, ट्रस्टी रख सकती है, केवल इस संकल्प से कि सवेरे आंख खुले तो पहले पहले प्यारे बाबा को सामने देख करके बाबा को खूब नमस्ते करें। खूब नमस्ते का मतलब है अच्छी तरह से, एक बार नहीं, बाबा तो नमस्ते स्वीकार, लेकिन हम पूरा सचेतन होके, जाग करके, जागृत होके, नहीं तो कहते बाबा नमस्ते, ऐसे नहीं, पता ही लगा कि कब नमस्ते हो गया और नमस्ते पहुंचा भी नहीं, किसको देख ही किया, करे बाबा नमस्ते, बाबा नमस्ते, बाबा नमस्ते, बोलिए बाबा नमस्ते, हाँ इस बाबा नमस्ते, नमस्ते बाबा, हाँ ऐसे भी कहते बाबा नमस्ते, बाबा भी तो हाथ जोड़ के करते थे नमस्ते, हाँ दिल से करे। लेकिन सुबह सुबह उठो कहते कहते, ओ प्यारे बाबा नमस्ते नमस्ते, प्यार से कहो मुस्कुराते हंसते हंसते, ओ प्यारे बाबा नमस्ते नमस्ते, ओ प्यारे बाबा नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। तो बाबा गुड मॉर्निंग करें तो सवेरे उठते ही सबसे पहले ईश्वरीय प्रेम में मगन हो जाएं, सामने बाबा को देखें और आनंद आए कि बाबा ने मुझे उठाया। अमृत वेला, अमृत बेला जगा रहा कोई, किरणों के बाहों में समा रहा कोई, मीठे बच्चे कहे बुला रहा कोई, अमृत बेला जगा गया कोई, जगा रहा कोई। सवेरे उठे बाबा के प्रेम में मगन हो जाए, नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा, हाथों से दे दिया टीका मस्तक पे मेरे विजय का, मस्तक पे मेरे विजय का। सवेरे उठते ये दृश्य अपने सामने रखें कि मैं जगा, बाबा ने मीठे लाडले बच्चे कह के जगाया और उठाया मुझे, और मैं कहां जगा, वतन में, क्योंकि रात को वतन में बाबा की गोद में शरीर वहीं पर विश्राम किए तो आंख तो वहीं खुली। बाबा ने उठाया, उठाया मुझे, प्यार किया, पुचकार किया, पोछा, मुंह पोछ दिया, पोछ करके यहां तिलक था, तिलक लगा दिया, तिलक देखो अपने सामने, दृश्य देखिए कि बाबा मेरे मस्तक पर सवेरे सवेरे यहां तिलक दे रहे हैं, आहा। और फिर बाबा जिसे ताज अपना पहना रहे हैं हमको, और फिर बाबा गोद में बिठा के, मेरे बेटे राजा बेटा, कितना प्यारा बेटा, वाह। और फिर खड़ा करके पीठ थपथपा के बाबा कहते, बेटा मेरे राजा बेटा, मेरे नैनों के नूर, सिकी लधे, मेरे सिर के ताज, मेरे उम्मीदों के शराग, मेरी आवाज, मेरे सर्वस, मेरे साथी, मेरे प्यारे लाडले, खूब प्यार करके वो बाबा मुझे भेजता है। तो पहला संकल्प वहां से आए कि मैं शिव शक्ति अवतार हूं, मैं पवित्रता का फरिश्ता अवतरित हुआ हूं, मैं पवित्रता का फरिश्ता अवतार हूं। फिर चारपाई से नहीं उतर रहे हैं आप, आपको लगे कि मैं वतन से उतर रहा हूं, और आते ही धरती पर चारों तरफ देखें तो ऊपर देखें कि मैंने मम्मी का मास्क पहना है, ऊपर चेहरा जो है बच्चे समझ रहे हैं मम्मी है, और अंदर अंदर सोचें कि इनको पता नहीं मम्मी तो मम्मी की तो मम्मी हो गई, मम्मी बन गई, ये तो मम्मी नहीं कोई फरिश्ता, मैं तो फरिश्ता हूं। अंदर से देखें, पूरा अपना आउटलुक पूरा चेंज कर ले, एटीट्यूड, ना मम्मी ना पापा ना बेटा ना बेटी ना लौकिक कोई संबंध ही नहीं, आपका एक अलौकिक होना चाहिए कि मेरा एक नया दिन है, जब नए दिन की नई शुरुआत हो, जब नए दिन की नई शुरुआत हो, एक बाबा बस तेरा ही साथ हो, सामने देखे तुझे पहली नजर और दिल ही दिल में बाबा तुझसे बात हो, जब नए दिन की नई शुरुआत हो, एक आनंदपूर्ण दिन के साथ आपकी दिनचर्या का शुभारंभ होना चाहिए। तो पहला एक उठते ही सहज युक्ति ये है कि बाबा को खूब नमस्ते कर लो, और नमस्ते करके बाबा के प्यार में समा जाओ, बाबा के प्यार से अपने आप को इतना भर लो ईश्वरीय प्यार से कि किसी भी देहधारी के प्यार की जरूरत नहीं पड़े। नहीं तो मन हमेशा ढूंढता रहता है, कोई मुझे पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, वो ढूंढता रहता है मन, इसलिए उसको बाबा के प्यार से, ईश्वरीय प्यार से भर दो, और उसके साथ साथ अपनी दिनचर्या का आरंभ इस अच्छे दृष्टि के साथ करें कि भगवान ने मेरा श्रृंगार किया है, भगवान मुझे जन्म दिया है, भगवान ने मुझे तैयार किया है, मैं ईश्वरीय संदेशी हूं, ईश्वरीय दूत हूं, शांति का दूत हूं, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, मेरा अवतार हुआ है, और धरती पर जैसे पांव रखें जमीन पर, ऐसे लगे मुझसे किरणें निकल रही हैं, ये आभा प्रभा मंडल मेरे चारों ओर है, मैं शक्ति का पुंज हूं, मैं उस अपने रूप को देखें। तो श्रेष्ठ स्वमान ले लें। दूसरी बात, इस श्रेष्ठ स्वमान को दिन भर में आपको याद करना है, ध्यान रखें, जैसे यह एक मैं शिव शक्ति अवतार हूं, मैं शिव शक्ति अवतार हूं, अगर कोई देख ना रहा हो, दिखाने के लिए नहीं, कमरे में है तो अपने आप उठ जाए, धरती पर पांव रखते ही खड़े हो जाए और ऐसे करें, अभी भी करें आप, ऐसे करें। वो कांग्रेस वाला नहीं, ये वाला, मैं वो नहीं कह रहा हूं, ये वाला है वरदानी मुद्रा। हाँ जी, वरदानी मुद्रा ऐसे होता है, ऐसे नहीं, वो नहीं, ठीक है। हाँ, ऐसे करें, ठीक है, अब बैठ भी सकें बहुत अच्छा है ऐसे, ठीक है, जो बैठ सकें ऐसे अलर्ट, ऐसे बाबा की वरदानी हाथ देखे है ना। हाँ, हम सब भी बाबा की समान ही तो हैं, ऐसे देखे। हाँ, मैं शिव शक्ति हूं, बोलिए मैं शिव शक्ति हूं, सब बोलिए, भाई भी सत्ता थोड़े बोलेंगे, वो भी बोलेंगे मैं शिव सत्ता हूं, नहीं शिव शक्ति हूं, बोलिए। हाँ, पीछे आवाज नहीं आई, मैं शिव शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति अवतार हूं, मैं सब कुछ कर सकती हूं, मैं महान हूं, मैं मेहमान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। ऐसे स्वयं को सवेरे सवेरे शक्ति संपन्न कर लें और दिन भर के लिए अभ्यास कर लें, एक बार में 5 और दिन भर में 5 बार, आप देखेंगे इसका प्रत्याशित, इसकी परिणाम, इसका परिणाम मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। 5 बार एक बार में और दिन भर में 5 बार, टाइम फिक्स कर लें, करके देखिए आप, एक हफ्ता नहीं एक ही दिन करके देखें, एक दिन में ही आपके ढेर सारी चीज बदल जाएंगे, सुमन में बहुत बड़ी ताकत है। और सरल क्या कर लें, आत्माभिमानी बनना तीव्र पुरुषार्थ है, हम बहुत अभ्यास करते हैं लेकिन आत्मविमानी नहीं बन पाते हैं। आत्मविमानी बनने के लिए अपने आप को तैयार करें, देखें अपने आगे, दृश्य बना लें, ये शरीर दीप है, मैं आत्मा ज्योति हूं, ये शरीर सीप है, मैं आत्मा मोती हूं, ये शरीर गृह है, मैं गेही हूं, ये देह है, मैं देही हूं, ये बाजा है, मैं इसका वादक हूं, ये राजधानी है, मैं इसका राजा हूं, ये मेरी रचना है, मैं इसका रचता हूं, ये मेरी धनिया है, मैं इसका धनी हूं, ये वृक्ष है, पुष्प है, वृक्ष है, मैं इसमें पुष्प हूं, फल हूं, ये मठ है तो मैं महंत हूं, ये कुटिया है मैं संत हूं, ये सोने की डिबिया है मैं इसमें हीरा चमक रहा हूं, तुम तो आत्मा हो तुम शरीर नहीं हो, तुम बिन तो जैसे तरकश में तीर नहीं हो, तुम हो जो इस शरीर में तो रोशनी कायम, तुम रूह हो बदन में तो ये जिंदगी कायम, तुम बिन तुझे से कलश में नीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो तुम शरीर नहीं हो, ये तन तुम्हारा रथ है तुम आत्मा रथी, निश्चय विजय तुम्हारी है प्रभु जो सारथी, मत हो अधीर की तुम्ही महावीर तुम्ही हो, तुम तो आत्मा हो तुम शरीर नहीं हो, मस्तक गगन में चमकते तुम ही सितारे हो, न टूटे न गिरे ऐसे तारे हो, निर्भय बनो कि पानी पर लकीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो तुम शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो तुम शरीर नहीं हो। ऐसे अपने आत्म को बड़े अच्छे रंगत के साथ, एक दिन सब जगह छुट्टी ले लो, घर में छुट्टी ले लो, एक दिन दरवाजा बंद करके भूखा ना रह करके खाओ पियो, लेकिन एक दिन ठान लो कि रोज रोज अभ्यास करते हैं, आज दिन भर मुझे आत्मा निश्चय की गहराई में जाना है। मैं 35 साल पहले का अपना अनुभव सुना रहा हूं, तीन दिन, एक दिन मैंने छुट्टी लिया किचन से और ओम शांति भवन में वहां पर अभ्यास करने लगा, दिन भर अभ्यास किया, कुछ हुआ ही नहीं। दूसरा दिन फिर छुट्टी लिया, फिर बढ़ाया, कुछ कुछ हुआ। दूसरे दिन आनंद आने लगा, लेकिन लगा कि अभी और बाकी है। तीसरे दिन एक दिन और छुट्टी ले ली किचन से, फिर तीसरे दिन भी लगा, इतना आनंद आया कि अभी वो भुलाए ही नहीं भूलता है। प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ करना है तो लगना है और निश्चय करना है दृढ़तापूर्ण, क्योंकि समय बहुत कम है, करना बहुत कुछ है। साधारण पुरुषार्थ के दिन समाप्त हो गए, अब करके रहना है। तो ये आत्मवाणी बनने की लगन में मगन हो जाइए। अमृत बेला संकल्प करें कि मुझे अमृत बेला पक्का करना है, अच्छा करना है, काम चलाऊं नहीं। सब कोई बैठ जाए, ऐसे बैठे, ऐसे बैठे, ऐसा बैठ सके तो अच्छा है, नहीं बैठ सके तो कोई बात नहीं, परेशान ना हो, ऐसे बैठे और हाथ ऐसे रखें, थोड़ा ऐसे चेहरा उठाएं अपना। ये मैं क्यों कह रहा हूं, रोज आपको अमृत बेला ऐसे बैठना है, ऐसे नीचे बैठ सके सर्वोत्तम, सबसे अच्छा यहां बैठे, जो बैठ सके ऐसे बैठे, चेहरा थोड़ा ऊपर करें, आंखें खोलें और थोड़ा मुस्कुराएं, चेहरे पर मुस्कुराहट भी आना चाहिए, ऐसा लगे कि आप योग के लिए बैठे हैं, हठ योग के लिए नहीं, ठीक है ना। चेहरे पर मुस्कान है, मुस्कुराएं जरा, तो थोड़ी देर के लिए मुस्कुरा ले, ऐसे ही मुस्कुरा ले अपने भाग्य को देखकर, कितना अच्छा मुस्कुरा रहे हैं आप, कितनी अच्छी, देखिए फोटो लेने लायक है, सब बहुत अच्छी मुस्कान से बैठे हैं। ये मुस्कान हमारी अमृत वेला होनी चाहिए, पहली ये स्टेज है। ऐसे बैठ के सामने देखें और बाबा को देखें, लगातार एक दो मिनट तक बिना पलक झपकाए, अपलक निर्निमेश बाबा को देखें, जैसा कि 5000 वर्ष के बाद फिर बाबा से मुलाकात हो रही है और बाबा को हम जुदा नहीं होने देंगे। तुमको निहारने को जी चाहता है, बाबा को देखे, मिले कल्प बाद हमको, अब हम जुदा ना होंगे बाबा को। जब भी किसको नींद आए तो 2-3 मिनट तक बिल्कुल लगातार बाबा को देखें, आपकी नींद उड़ जाएगी। सवेरे निद्रा मुक्त अच्छी तरह समृद्ध वेला करना है आपको, ठीक है, करेंगे ना पक्का, ठीक है, बहुत अच्छा। ये आत्मवाणी बनने की दिन भर में प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए, क्योंकि यही पहला पार्ट है और यही अंतिम पार्ट है, इसके बिना कोई भी संपूर्ण बनेगा नहीं। और इसमें कितना भी मेहनत लगे, इस मेहनत को सहज करना ही है, युक्तियों से भी करना है, लेकिन करना है, इससे क्रॉस होके हम पहुंचेंगे। दूसरी बात, निरंतर योग की बात सोच ले, निरंतर योग कैसे हो, बाबा को याद करना है तो युक्ति बना ले, 5-6 अपने अलग अलग युक्तियां बना ले, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कैसे वतन में बैठे बाबा के दृश्य इमर्ज करें। मैं मधुबन में ऐसे याद की तमाम युक्तियां अपनाता हूं। आप सबको एक संकल्प देता हूं कि 5 बातों का एक दिनचर्या बना लें कि मुझे इस अव्यक्त मास से इस वर्ष मुझे इस प्रकार की युक्ति करनी है। एक काम के लिए मैं आपका सहयोग चाहता हूं। क्या जितने भाई बहने मेरी आवाज सुन रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं, मिल रहे हैं, ये सब संकल्प कर सकते हैं कि मुझे भोजन पर मौन में भोजन करना है? क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं गले में पानी अटक जाए और पानी भी ना मांगो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मौन में, मौन का मतलब है अंतर्भूतता, और साइलेंस में करें भोजन, और भोजन के समय बाबा को याद करें। मैंने अलग अलग युक्तियां बताई हैं, किया है, अभी आजकल एक नई युक्ति इस साल के है, मैं बोलता हूं, आओ बाबा आओ, आकर भोग लगाओ, साथ हमारे खाओ, हमको भी खिलाओ, आओ बाबा आओ, साथ में भोजन खाओ, साथ हमारे खाओ, हमको भी खिलाओ, आओ बाबा आओ, आकर भोग लगाओ, साथ हमारे खाओ, हमको भी खिलाओ, आओ बाबा आओ, आकर भोग लगाओ। बस 2 बार कह दो इतना, मजा आ जाए। फिर ऐसे युक्ति और निकालता हूं, सवेरे सवेरे वॉकिंग, ठंडी के दिन है, पांडव भवन में रहता हूं, अभी जाऊंगा वहां पर, सवेरे देखता हूं अभी ठंडी है, बाहर निकल नहीं पाते हैं, डाइनिंग हॉल में वहां चक्कर लगाता हूं, ऐसे थोड़ा जॉगिंग जैसे, चलना फिरना भी है तो चक्कर लगाता हूं पूरे डाइनिंग हॉल में, एक तरफ से दूसरे, पूरा चक्कर एक, बाबा रहा है देख, पूरा चक्कर दो, बाबा कुछ कह दो, पूरा चक्कर तीन, बाबा बड़ा हसीन, पूरा चक्कर चार, बाबा करता प्यार, पूरा चक्कर पांच, बाबा से रहो सांच, पूरा चक्कर छह, बाबा तुम अच्छे, पूरा चक्कर सात, बाबा मेरे साथ, पूरा चक्कर आठ, पढ़ो प्रेम का पाठ, पूरा चक्कर नौ, बाबा से लगी लो, पूरा चक्कर दस, बाबा कहते बस। यहां लिफ्ट है, लिफ्ट में आता जाता हूं, पक्का कर दिया, लिफ्ट में पहुंचते ही मैं वतन में जा रहा हूं, बाबा मेरी लिफ्ट को ऊपर बुला रहे हैं, बाबा ऊपर ले जा रहे हैं, लिफ्ट खुलता है, बाबा के पास पहुंच जाता हूं, फिर आता हूं, बैठता हूं, मेरा अवतार हो रहा है, लिफ्ट से मैं उतर रहा हूं, पक्का वो उसमें पहुंचते ही याद कर लिया है। आप घरों में, घर से निकलते हुए ऐसे बीच बीच में युक्तियां बनाए, ये युक्तियां बड़े काम की हैं, ऐसे युक्तियां हैं, पांच स्वरूपों का अभ्यास बहुत अच्छा है। आइए बैठते हैं, बैठते हैं हम सब, जैसे मैं करूं वैसे करके क्लास को संपन्न करते हैं। आप के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, स्नेह में समाये रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें ईश्वरीय स्मृति में, क्योंकि समय ऐसा है कि हमें स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, अपने को संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आना जाने का, आवागमन का खेल भी चल रहा है, इसलिए तैयार भी रहना है, ठीक है ना। और आप आगे पुरुषार्थ में निरंतर बढ़ते रहे, उमंग उत्साह के साथ प्रभु मिलन के लिए आप सब आए, आपको ऐसे अनेक युक्तियां मिले पुरुषार्थ में जिससे आप उमंग में, उत्साह में उड़ते रहें, हमारी यही शुभकामना है। आइए बैठिए, याद में बैठते हैं, जैसे मैं एक्शन करूं वैसे कीजिएगा, मैं एक बार कहूं आप दोहराइएगा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूजन्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूजन्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूजन्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा।